नमो लोहे शुक्र कालवर्ती अरहंतान, नमो लोहे शुक्र कालवर्ती सिद्धान, नमो लोहे शुक्र कालवर्ती आयाम, नमो लोहे शुक्र कालवर्ती उच्चारण, नमो लोहे शुक्र कालवर्ती शवशावन। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जय गुरु शासनम। नमः समय शाराय स्वानुभूत्या चकाशते हित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरक्षिते। एगो में शशदो अपाज्ञान दर्शन लखनऊ शेषा में बाहिरा बाबा सवेश योग लखना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुझकी भाई छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे, कहन्य ते मारू जरी प्रमाण मात्र नथी करे। जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यपणे, ते जीव जाने आत्म ने तस्मोह पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे, ए रीत शुद्ध कथाई ने जे ज्ञात ते तो ते छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे, जाने जी कर्मोदय निर्जरा बंद थे मज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सित ने, वंदी कहूँ शुद्ध केवली कथित आशमय प्राप्त कहो। ओम श्री नम श्री देव्य नम श्री देव्य नम श्री देव्य। कुंकुल आचार्य भगवान द्वारा रचित समय सारजी परमागम शास्त्र है, उसकी संवर अधिकार की 181 से 183 गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें आचार्य भगवान ने सबसे पहले मथाले में ही ये बात लिखी है कि अभी सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है, उसकी प्रशंसा करते हुए ये गाथा लिखी गई है। तो ये गाथा में भेद ज्ञान की प्रधानता भरी हुई है। भेद ज्ञान दो के बीच में होता है और यहाँ जो तीन गाथाएं हैं उसमें दो गाथाओं में भेद ज्ञान की चर्चा करके अभेद ज्ञान कैसे प्रकट तीसरी गाथा में हो जाता है उसका स्वरूप बताया गया है। ये जो अपनी दो दिन से बात चलती है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोध क्रोध में ही है और कोई उपयोग में क्रोध नहीं है, तो ये उपयोग में उपयोग है तो अभी तो जीवों के पास उपयोग में उपयोग होने पर भी उसका शुद्ध परिणमन तो अभी नहीं हुआ है अज्ञानी जीव को। तो वो उपयोग को कैसे पहचाने, वो उपयोग की कैसे कदर करके अपने उपयोगवान में वो उपयोग को ले जाए, यानी कि उपयोगवान में उपयोग को ले जाने का मतलब ये है कि उपयोग को कहीं ले जाना नहीं पड़ता है, उपयोग कहीं चला भी नहीं गया है, उपयोग जो क्षेत्र में रहता है उधर ही सदाई रहता है, मगर उसका जीव को पता नहीं होने से उसको ऐसा लगता है कि मेरा उपयोग बाहर चला गया है और मेरे उपयोग को मेरे को अभी द्रव्य की सन्मुख लाना है, मेरा उपयोग को मेरे को फिराना है, ऐसी भ्रमणा अनादि से जीव की चलती रहती है। वास्तव में कोई भी उपयोग जो प्रकट होता है, जो अपना लक्षण लेके उसकी प्रकटता होती है, वो उपयोग कभी अपना क्षेत्र छोड़ता ही नहीं है। उसका आयुष्य ही एक समय का है और उपयोगवान का आयुष्य तो त्रिकाल रहता है, तो वो त्रिकाल में से जो उपयोग की प्रकटता होती है
वो प्रगटता समयवर्ती होने पर वो जहाँ प्रकट होता है उधर से ही उसका काम चलता है, उसकी क्रिया उधर ही चलती है, उसकी ज्ञान क्रिया उधर ही चलती रहती है। ना तो वो उपयोग कभी बहिर्मुख होता है, ना तो सचमुच में वो उपयोग कभी अंतर्मुख भी होता है। उपयोग में रह के ही ऐसी घोषणा करता है कि मैं उपयोगवान हूं, उसी को बोला जाता है कि ये उपयोग अंतर्मुख हो गया। उपयोग जब तक ऐसी घोषणा ऐसा जयघोष नहीं करता है कि मैं उपयोगवान हूं, तब तक ऐसा बोला जाता है कि ये उपयोग क्रोधादि में चला गया और उसको वहां से अंदर लाना है। वास्तव में अपन उसकी व्यवस्था देखे, वास्तव में वो उपयोग से अपन वो उपयोग को देखे तो उपयोग अपने स्थल से खिसकता ही नहीं कहीं, वो उपयोग अपना क्षेत्र को कभी छोड़ता ही नहीं, वो ज्ञान अपने ज्ञान में ही रहता है। ना तो वो ज्ञान बहिर्मुख होता है यानी कि क्रोधादि रूप होता है, ना तो सचमुच में वो निरपेक्ष ज्ञान ज्ञायक रूप भी होता है। ऐसा ये निरपेक्ष उपयोग है, ऐसी ये ज्ञान का अंश की प्रक्रिया है। अंशी की जब चर्चा चले तो उसमें कोई क्रिया वाला अंश है ही नहीं, वो तो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामी कह है, वो तो अवैध अखंड तत्व है, वो ज्ञायक भाव है, वो भूतार स्वभावी अपरिणामी पदार्थ है, वो अंदर में अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरा पड़ा हुआ भरचक खजाना है अंदर में, वो अकूट खजाना है। उसमें से समय 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 पर कितनी भी ज्ञान की किरणें निकले, अनंत गुणों की अनंत पर्यायों भी निकले, फिर भी उसमें कभी वधघट नहीं होती, कमी नहीं होती। शक्ति अंदर में जो पड़ी है वो शक्ति शक्ति रूप रह के शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति व्यक्त नहीं होती है, शक्ति की व्यक्ति को उत्पाद बोला जाता है। शक्ति शक्ति में रह के शक्ति की व्यक्ति का नाम उत्पाद होता है, तभी तो शुद्ध द्रव्य दृष्टि का विषय उसको मिलता है। अगर अंदर में से कोई अंश बाहर आवे और अंदर में कमी हो जाए तो अंदर तो घट पड़ जाती है। तो अंदर का जो स्वभाव है, शक्ति रूप स्वभाव है, गुण रूप स्वभाव है, असंख्य प्रदेशी है, अनादि अनंत काल है उसका और निर्विकल्प वस्तु मात्र है, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होती हुई ऐसी एक वस्तु मेरे पास अनादि से बच गई है। कितना भी जीव का उसकी बहिर्मुख पर्याय में विपरीत परिणमन हो जाए, मोराग द्वेष की कितनी भी प्रक्रिया चल जाए, फिर भी अपना निज ज्ञायक परमात्मा ऐसा न ऐसा सदाय त्रिकाल अवस्थित अपना ज्ञान आनंद और सुख से भरा पड़ा अपरिणामी तत्व ऐसा न ऐसा रहता है। ऐसा अपरिणामी तत्व है, उसको भूतार स्वभाव ज्ञायक भाव ध्रुव भाव अखंड भाव नित्य भाव ऐसा बोला जाता है, वो परिपूर्ण शुद्ध दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय इसको बोलते हैं कि जिसमें दृष्टि नहीं होती है, उसका नाम दृष्टि का विषय है। अनंत गुणों की अनंत पर्यायों से रहित ऐसा अनंत गुणात्मक अखंड तत्व, उसको दृष्टि का विषय बोला जाता है। ऐसा दृष्टि का विषय, मुझे गुरुदेव श्री ने दृष्टि के विषय बारे में कोई ऐसा प्रवचन नहीं मिलेगा कि जो प्रवचन में दृष्टि के विषय की बात नहीं आती हो। ऐसा जो दृष्टि का विषय, ऐसा शुद्ध परमात्मा चैतन्य देव, ऐसा त्रिकाल परमात्मा, ऐसा लबालब भरा हुआ अपनी अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा, अपने पास सदैव मौजूद है, हयाती रूप है, त्रिकाल पड़ा है, शाश्वत देव है, अनादि अनंत परमात्मा है, ऐसा मैं हूं, यही मेरी वस्तु है, ये वस्तु मात्र परमात्मा वो मैं हूं, उसको बोला जाता है। यहां लिखा है उपयोग, वो उपयोग त्रिकाली परमात्मा है, और वो जो उपयोग है वो रहता कहां है कि वो उपयोग रहता है अपने अंश रूप उपयोग में रहता है। उपयोग जो अंशी है, माने कि उसको उपयोग बोलो, उपयोगवान बोलो, त्रिकाली द्रव्य बोलो, ध्रुव बोलो, चैतन्य सत्ता बोलो, वो जो ज्ञायक भाव भूतार स्वभावी परमात्मा है, वो अपना अंश रूप लक्षण रूप अपनी जो ज्ञायक की ही एक अंश रूप सत्ता है उसमें अनादि से विराजमान है। कोई कहे कि मेरे ज्ञायक को मेरे को ढूंढना है, मेरे को चाहिए, तो मेरे को कहां खोजना, कौन सी मार्गणा में वो मेरे को मिलेगा, तो वो एक ज्ञान का अंश रूप लक्षण है, वहां पे ही वो विराजमान है अनादि से। भेद से देखो तो वो अंश में विराजमान है, अभेद से ज्ञायक भाव को देखो तो वो अपनी त्रिकाल सत्ता में ही त्रिकाल द्रव्य विराजमान है, अभेद में ही अभेद विराजमान है, अभेद की सत्ता में ही अभेद रहता है, अपरिणामी तत्व अपरिणामी में ही रहता है, उसका भेद करो तो वो अंश में रहता है, अभेद से उसको देखो तो ज्ञायक भाव में ही अपने गुणों में ही विद्यमान है, अपनी सत्ता में ही विद्यमान है। ऐसा एक ज्ञान और ज्ञायक का प्रकरण ये गाथा में आया है। अभी ये इसमें जो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि भाव नहीं है, तो इसमें दो सत्ता की भिन्नता बताई है। एक सत्ता है वो द्रव्य सत्ता है, और द्रव्य सत्ता के साथ में उसका ज्ञान रूप अंश को रखा है, और एक क्रोधादि की सत्ता है, वो क्रोधादि की सत्ता को पुद्गल में डाल के उसको पुद्गल से अवैत कर दिया है, और ज्ञान की सत्ता को अंश की सत्ता को अंशी से अभेद करके उसने रखा है। ये दोनों सत्ता का विभाग इसमें दिखाया है कि ज्ञायक की सत्ता उसके ज्ञान में अंश, ज्ञान के अंश में रहती है, और क्रोधादि की सत्ता जो बोली जाती है वो क्रोधादि क्रोधादि में ही रहता है, यानी कि वो सचमुच पुद्गल का ही परिणमन है। जो परिणमन विभाव रूप पुद्गल के आश्रय से होता है, पुद्गल के लक्ष्य से होता है, कर्म के लक्ष्य से विभाव की प्रगटता होती है, उसको कर्म का परिणमन पुद्गल का परिणमन ही बोला जाता है। एकस्य पुद्गलस्य ही निर्माणम 39वीं गाथा में ये बात आई है, 39वें कलश में। तो ये यहाँ जो दोनों की भिन्नता बता के आचार्य भगवान ये बताना चाहते हैं कि तू ऐसी भिन्नता समझ लेगा तो तुझे अविपरीत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी भिन्नता अगर तुझे तूने समझ ली तब अविपरीत ज्ञान प्रकट होगा। अगर दोनों को तू एक साथ में रखेगा, दोनों को तू इकट्ठा करके देखेगा कि क्रोध तो मेरी पर्याय में होता है, मेरी पर्याय तो अभी विद्यमान है, मैं तो अभी रागी द्वेषी मोही हूँ, मेरा परिणमन तो अभी विभाव रूप चल रहा है, और वो पर्याय तो मेरे द्रव्य की है, द्रव्य की पर्याय को मैं पुद्गल में कैसे डाल सकता हूँ। अगर ये प्राथमिक भूमिका की बात में से भी तू अभी नहीं निकला है तो ये ज्ञान का अंश और अंशी की सत्ता और क्रोधादि की सत्ता अलग अलग तुझे भाषित नहीं हो सकती है। ज्ञानी लोग फरमाते हैं, मुझे गुरुदेव श्री की एक शैली है कि वो अपने निज ज्ञायक तत्व की दृष्टि और आदर करना हर समय में सिखाते रहते हैं, और जो जो पर्याय चलती है उसका ज्ञान भी हमेशा कराते रहते हैं। अभी ये गुरुदेव को नित्य सुनने वाले को तो ये सब पता होता है कि मेरी ही पर्याय में मोरा द्वेष का परिणाम है, कोई पर की पर्याय में नहीं है। ये विवेक तो जीव को पहले होना चाहिए, ये प्रमाण की सत्ता का ज्ञान तो होना चाहिए, मगर वो ज्ञान ही करता रहे वो कि ऐसा तो है, ऐसा तो है, ऐसा तो है, तो उसको ये ज्ञान और ज्ञायक की भिन्न सत्ता मालूम नहीं होगी, क्योंकि उसका लक्ष्य उधर ही चलता रहता है, उसका कायमी लक्ष्य उधर ही चलता रहता है कि ये राग तो है उसको मेरे को दूर करना है, क्रोध तो है उसको मेरे को हटाना है, तो ये हटाने से नहीं हटते हैं, ये दूर करने से कभी दूर नहीं होते हैं, मगर जिसकी सत्ता में वो नहीं है, जिसकी सत्ता में उसका परिणाम नहीं चलता है, जिसकी सत्ता में उसकी विद्यमानता कभी होती नहीं, कभी आई नहीं, कभी नहीं आने वाली है, वो जो मेरी सत्ता है, वो मेरे जो मेरा शाश्वतपना है, वो मेरा अनादि अनंत स्वरूप है, ज्ञान आनंद से सुख से भरा हुआ स्वरूप है, अगर वहां तेरी दृष्टि चली जाएगी तो वहां विभाव की उत्पत्ति का क्रम ही वहां से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये गाथा को सोचना है, अगर इस तरीके से अपन नहीं सोचेंगे और बार 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 जो विभाव की चर्चा ही अपने मंथन में और चिंतन में चलेगी तो क्या होगा कि वहां से छूटेगा ही नहीं जीव, और परिणमन तो ये चलने वाला ही है, जब तक राग चलेगा तब तक ये परिणमन चलने वाला है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो अपने को उसका ज्ञान करके, उसका ज्ञान में निर्णय होने के बाद में अपनी ज्ञान और ज्ञायक की सत्ता का ही विचार करने की जरूरत है, तो वो बाद में उस सत्ता का विचार छोड़ के ज्ञान और ज्ञायक की सत्ता तक पहले में पहले आना चाहिए। जब जीव वहां आता है तब उसको वास्तविक में उसका स्वरूप का पता चलने की शुरुआत होती है, तब तक तो वो बाहर ही बाहर घूमता रहता है। अभी जीव क्या है कि बाहर में बाहर घूमता है, आंगने तक भी नहीं आता है, तो घर में तो कैसे जाएगा, आंगना है वो उसका लक्षण है और घर है वो उसका लक्ष्य है, तो वहां पहले में पहले उसको आना चाहिए, इसको निर्णय में लेना चाहिए कि मेरा ज्ञान है वो प्रगट लक्षण है और ज्ञायक है वो मेरा वास्तविक त्रिकाल स्वरूप है, और उसी के बीच में अपना समग्र पुरुषार्थ लगा देना चाहिए। उसी के बीच में अपना पुरुषार्थ लगने को चलने लगेगा तो वो भेद निकल के अवैध परिणमन हो जाएगा। ऐसी स्थिति इसमें आचार्य भगवान ने बताने का प्रयत्न किया है। तो उस तरीके से अपन उसको सोचेंगे तो अपना क्रम में ऐसा ही क्रम आने लगेगा कि एक निर्णय आएगा, बाद में यथार्थ निर्णय आएगा, बाद में स्वविकल स्वसंवेदन आ जाएगा और बाद में निर्विकल स्वसंवेदन आ जाएगा। ऐसी ये महत्वपूर्ण और अपूर्व से अपूर्व गाथा है। अभी इसमें जो ज्ञान ज्ञायक का, ज्ञान में ज्ञायक है और ज्ञान में क्रोधादि नहीं है, उपयोग में उपयोगवान है और उपयोग में क्रोधादि नहीं है, और क्रोध क्रोध में ही है, निश्चय से क्रोध उपयोग में नहीं है, और उपयोग अष्ट कर्मों में भी नहीं है, और कर्मों और न कर्मों उपयोग में है, और कर्मों और न कर्मों कहीं पर है नहीं उपयोग में, माने कि ये त्रिकाली द्रव्य में भी कर्म नो कर्म नहीं है और उसके उपयोग में भी, माने कि उसका ज्ञान का अंश में भी कर्म नो कर्म नहीं है, तो उसकी सत्ता तो पृथक हो गई। अभी ये अपनी सत्ता जहाँ है वहां न वहां अपने को कैसे भेदान करके अभेद में जाना, उसकी प्रक्रिया अपने को समझनी है। वो प्रक्रिया समझेंगे अपन तो अपना जो अभिप्राय है ना, वो अभिप्राय उधर चलने लगेगा। ये सब चीजें ज्ञान की प्रधानता से कही जाती है, मगर इसमें सब काम अभिप्राय का है। जब तक जीव का अभिप्राय नहीं पलटता है तब तक जितना भी उसको क्षयोक्षम हो जाए, कितनी भी सूक्ष्माति सूक्ष्म बात पता चल जाए, मगर ये मार्ग में कीमत अभिप्राय की है। अभिप्राय जहां पलटता है तो सब पलट जाता है, अभिप्राय नहीं पलटता है तो सब विपरीतता चलती रहती है। अभिप्राय यानी दृष्टि यानी श्रद्धा यानी विश्वास, ये जब तक नहीं पलटता है तब तक जितना भी ज्ञान में ज्ञायक है ऐसा भी उसको पता चल गया हो, मगर वास्तव में ज्ञान में ज्ञायक बस ही रहा ऐसा अभिप्राय नहीं होवे, तब तक अभेद परिणमन नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में एक अनेकांत की चर्चा भी अपन ले लेते हैं। एक समन भद्र आचार्य हुए हैं, उसने लिखा है अनेकांतोपि अनेकांत प्रमाण नहीं साधनम, ऐसा एक श्लोक आया है कि अनेकांतोपि अनेकांत और प्रमाण नहीं साधनम, अनेकांत की सिद्धि कैसे हो सकती है कि अनेकांत की सिद्धि प्रमाण और नहीं से हो सकती है। उसमें अनेकांत की सिद्धि करने के लिए प्रमाण भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, उसको बोला जाता है अनेकांतोपि अनेकांत। तो अनेकांत है वो तीन प्रकार के होते हैं। अपना धर्म तो अनेकांत और स्यादवाद वाला है ना, जैन धर्म अनेकांत वाला है, स्यादवाद वाला है। तो उसमें अनेकांत क्या होता है, तो तीन प्रकार का अनेकांत होता है, वो एक ही प्रकार का अनेकांत नहीं है। अनेकांत के तीन प्रकार होते हैं। अनेकांत अस्ति नास्ति परक होता है, उसमें अस्ति आती है और नास्ति भी होती है, और अस्ति नास्ति पूर्वक अनेकांत का जन्म होता है, उसको बोला जाता है स्यादवाद। ये जो अस्ति नास्ति परक अनेकांत है उसके तीन प्रकार है। उसमें सबसे पहला प्रकार ये है कि स्वचतुष्टय में पर चतुष्टय की नास्ति है। स्वचतुष्टय किसको बोला जाता है कि अपना जो स्वभाव है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है, और पर का जो स्वभाव है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, तो पर की मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नास्ति है, ऐसी अपनी अस्थि को सोच के पर की नास्ति करके जो अस्थि नास्ति अनेकांत की परख करता है उसको ये वो जीव स्वचतुष्टय में पहले आ जाता है। स्वचतुष्टय माने अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र असंख्य प्रदेशी, और अपनी मोरा द्वेष वाली पर्याय भी उसमें आ जाती है, और अपना अनंत गुण भी उसमें आ जाता है। तो सबसे पहले में पहले वो पर की सत्ता से अलग होके अपनी प्रमाण की सत्ता में आ जाता है जी। अपनी प्रमाण की सत्ता में आने से उसको आनंद नहीं आता है, पर की सत्ता से छूटता है, मगर अपनी अभी पर्याय में मोराग द्वेष की प्रवृत्ति तो चलती रहती है। अपनी सत्ता में जो मोराग द्वेष पर्याय में चलते हैं ना, उसमें कोई पर की सत्ता का कोई कारणपणा की कुछ नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंधी अभी याद मत करना, क्षणिक उपादान ही लेना उसमें, कि अपनी उपादानगत तत्समय की योग्यता से ऐसा परिणमन होता रहता है। निमित नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हो तो उसको रखना, मगर लेना क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान से जो जीव सोचता है कि मेरी पर्याय होने योग्य होती रहती है, अपने सटकारक से होती है, मैं उसको फिरा नहीं सकता हूँ, मेरी योग्यता के अनुसार पर्याय का परिणमन होता है, ऐसा जिसको पर्याय को देखने के लिए क्षणिक उपादान से जो जीव देखता है वो निरपेक्ष पर्याय को देखता है, तो फिर उसको बार बार पर्याय को देखना नहीं पड़ता है। उसको पता चल जाता है कि मेरी पर्याय क्रमबद्ध है, मेरी पर्याय निरपेक्ष है, मेरी पर्याय होने योग्य होती है, मेरी पर्याय योग्यता अनुसार होती है, और जितनी जितनी पर्याय अनंत काल तक होने वाली है, जितनी जितनी अनादि काल से आज तक हो गई है, वो सभी वर्तमान पर्याय के सिवा पारिणामिक भाव में पड़ी हुई है। और जब जब उसका क्रम आता है तो उसका स्वकाल में उसका क्रम में वो प्रकट रूप हो जाती है। वो जैसी प्रकट होने वाली है, जो द्रव्य जो क्षेत्र जो काले जो भावे जो भवे जो निमित्ते जैसी पर्याय जैसे होने वाली है ऐसी ही होती है, उसको कोई फिरा नहीं सकता है, उसको फिराने के लिए कोई समर्थ ही नहीं है। पहले में पहले पर्याय का भी अपने स्वचतुष्टय में आके द्रव्य का गुण का और अपनी वर्तमान पर्याय का क्षणिक उपादान से निरपेक्षता से निर्णय करना उसका, मेरी पर्याय होने योग्य होती है, जैसी होनी वैसी होती है, मैं उसको फिरा सकता नहीं हूँ। ऐसा सुंदर मार्ग दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में भी अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हो जाती है। जिसको क्रमबद्ध बैठ जाता है, जिसको क्षणिक उपादान बैठ जाता है, वो फिर पर्याय को देखता ही नहीं, वो पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ करता ही नहीं, उसकी दृष्टि द्रव्य पे ही चली जाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले में पहले क्षणिक उपादान से अपनी पर्याय का भी निर्णय करना। त्रिकाली स्वभाव का अपना द्रव्य है, उसमें अनंत गुण भरे हुए है, और उसकी पर्याय क्रमबद्ध होने योग प्रति समय अनंत गुण की, अनंत पर्याय की प्रगतता होती रहती है। उसमें मेरा कुछ पुरुषार्थ चलता नहीं है। मेरा पुरुषार्थ क्या होता है कि समझण का पुरुषार्थ होता है। कोई पदार्थ को फिराने का पुरुषार्थ नहीं होता है जीव का। पुरुषार्थ किसे बोलते हैं कि सच्ची समझ करना कि मेरा द्रव्य स्वभाव ऐसा है, मेरा गुण का स्वभाव ऐसा है और मेरा पर्याय का स्वभाव ऐसा है। ऐसी सच्ची समझ जिसको होती है उसको सचमुच में पुरुषार्थ बोला जाता है। सच्ची समझ जिसको होती है वो फिर कभी पुरुषार्थ से अपनी पर्याय को पलटाने का पुरुषार्थ नहीं चलाता है वो, क्योंकि उसको समझ हो गई है। ये मार्ग समझ का है, करना धरना फिराना पलटाना ऐसा मार्ग नहीं है। ये सच्ची समझ उसका नाम धर्म है, अपने स्वभाव की सच्ची समझ उसका नाम धर्म है। तो सबसे पहले में पहले इस तरीके से अपने स्वचतुष्टय को सोचना, वो स्वचतुष्टय की अस्ति, उसमें पर चतुष्टय की नास्ति, उसको बोला जाता है अस्ति नास्ति अनेका। अभी इसके बाद में यहाँ तक जीव आता है अपने स्वचतुष्टय में, बाद में वो स्वचतुष्टय में ने स्वचतुष्टय में भेद ज्ञान चलता है। एक भेद ज्ञान स्व से पर का, स्वचतुष्टय से पर चतुष्टय का। दूसरा भेद ज्ञान अपनी ने अपनी सत्ता है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपनी सत्ता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप अपनी सत्ता है, वो ही सत्ता में भेद ज्ञान करना है। तो वो भेद ज्ञान क्या है कि जो वो भेद ज्ञान है उसमें ज्ञायक भाव वो मैं और प्रमत अप्रमत में नहीं हूं। माने कि ज्ञायक भाव की अस्ति और मेरे में उत्पाद वे की नास्ति। ज्ञायक भाव मेरा स्व और पर्याय पर, ऐसा एक अस्ति नास्ति अनेकांत है। ऐसा अस्ति नास्ति अनेकांत में जो जीव आता है तो वहां आने के लिए फिर उसमें प्रयोग चलता है, वहां काम ज्ञान का चलता है। फिर तब ये ज्ञान का अंश है ना, कार्यकारी शुरू हो जाता है। तब अभी वो ज्ञान का जो अंश है, वो ज्ञान का अंश कैसा है, वो स्वभाव का अंश है। वो ज्ञान का अंश है वो पारिणामिक भाव में से निकला है। वो पारिणामिक भाव में से निकला होने से ही उसको लक्ष्य का लक्षण बोला जाता है। वो लक्षण में कोई भी प्रकार का अभी मति श्रुत अवधि मन पर ये केवल कुछ नहीं लेना, वो सब वो अंश का विशेष में चला जाता है। सामान्य ज्ञान है उसकी विशेष पांच ज्ञान की पर्याय होती है। 140 कलश कलश टीका में ये बात है, आप देख लेना उसका प्रवचन, गुरुदेव का दिवाली पर का प्रवचन है। उसमें गुरुदेव ने बोला है कि मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ये सब ज्ञान के भेद झूठे हैं। क्या बोला है? झूठा है, झूठा, ऐसा बोला। तो फिर श्रोता ने प्रश्न किया, तो फिर सच्चा क्या है? ये पांचों भेद ने को आप निकाल देते हो ज्ञान के, तो फिर सच्चा क्या है? हमारे पास तो अभी मति श्रुत है, तो वो अंश को हम कैसे निकाले? तो सच्चा ज्ञान किसे बोलते हैं? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि सच्चा ज्ञान ज्ञान की पर्याय मात्र, उसमें कोई विशेष भेद रूप नहीं देखना। उसको पहले एक ही अंश में सामान्य विशेषपना भी देता है। जैसे अंशी में सामान्य विशेषपना है कि त्रिकाली द्रव्य को सामान्य बोला जाता है, अनंत गुणात्मक को ध्रुव सामान्य और उसकी कारणसूत्र पर्याय को ध्रुव विशेष जैसे बोला जाता है, तो वो अंश तो अंदर से आया है, वो लक्ष में से लक्षण निकला है, वो ज्ञायक में से वो लक्षण आया है, तो वो पूरा ज्ञायक है, वहां से वो उठा है उसका लक्षण। तो जितना उसमें है, जैसा उसमें सामान्य विशेष है, ऐसा ही वो अंश अंदर से प्रकट होता है सामान्य, और वो ही अंश परिणमता है उसमें मति श्रुत अवधि मन पर केवल होता है। तो अभी उसको सामान्य से देखना अंश को, ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। निरपेक्ष ज्ञान में निरपेक्ष ध्रुव बनता है, सापेक्षता तो नई नई प्रकट होती है, सापेक्षता का जन्म तो नया होता है, भावश्रुत ज्ञान नया होता है, केवल ज्ञान नया होता है। जितना पुराना उतना आत्मा, और जितना नया उतना व्यवहार आत्मा, जितना पुराना इतना निश्चय आत्मा, और जितना नया नया होवे वो सब व्यवहार आत्मा बोला जाता है। तो ये जो लक्षण है वो लक्षण कभी लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, वो लक्षण ने कभी लक्ष्य को आज तक नहीं छोड़ा, अनंत काल तक नहीं छोड़ने वाला है। जितना 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 नया 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 परिणमन आता है, चलता 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 रहता है, वो सब सापेक्षता है, वो सब कर्म सापेक्ष परिणमन है, वो सब में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटता है। वो जब जब वो प्रकट होता है तब कर्म का उदय अनुदय की अभाव का निमित्तपना उसमें लागू पड़ता है। और ये जो निरपेक्ष लक्षण है वो भी ज्ञायक की तरह शाश्वत है, वो अनादि अनंत है। एक अपेक्षा से ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा प्रगट रूप प्रति समय होता है, इसलिए उसको भी नित्य बोला जा सकता है। हाँ, वो प्रति समय ऐसा, प्रति समय ऐसा, प्रति समय ऐसा, उसमें उत्पाद होने पर भी वो प्रति समय ऐसा न ऐसा अंश, ऐसा न ऐसा अंश, ऐसा न ऐसा अंश, उपाधि बिना का अंश है, हरेक समय में ऐसा अंश प्रकट होता है। इसलिए वो अंश को, वो अपेक्षा से उसको नित्य भी बोला जा सकता है, क्योंकि उसमें पलटन नहीं है ऐसा कि आज लक्षण ऐसा आया कल लक्षण ऐसा आया, ऐसा नहीं होता है। लक्षण जैसा होता है ऐसा ही रहता है हमेशा। जैसे कोई भी पदार्थ का अपन लक्षण सोचे, गुड़ का लक्षण गड़पण होता है, साकर का लक्षण मिठास होता है, और नमक का लक्षण खारापना होता है। अभी ये लक्षण कभी फिरता है क्या? ऐसा न ऐसा रहता है। जब तुम उसको चखो तब उसका नाम परिणमन और परिणमन बोला जाता है, तब उसका स्वाद आता है, स्वाद आता है उसको परिणमन बोला जाता है। वो जो लक्षण है वो लक्ष्य अनन्य है, उसमें स्वाद नहीं है, वो तो परोक्ष है। अभी अभी वो लक्षण में लक्ष्य विराजमान है, ऐसा जिसको पता चल जाता है उसको भावश्रुत ज्ञान बोला जाता है, और वो भावश्रुत ज्ञान में अनुभूति होती है। ऐसी इसमें मजेदार बात भरी हुई है, ऐसा ये महत्वपूर्ण संवर का प्रकरण है। संवर किसको बोलते हैं कि संवर माने कि भव का अंत आ गया उसका, जो पर्याय संवर की हुई वो पर्याय का तो मोक्ष हो गया, क्योंकि वो पर्याय अभी दूसरी बार तो आने वाली नहीं है। ये भव के अभाव की बात इसमें आचार्य भगवान ने लिख के कमाल कर दी है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में और कोई भाव है ही नहीं, तू उपयोग में उपयोग को देख, उपयोग में उपयोगवान विराजमान है, और तेरी शक्ति जो अंदर में उपयोगवान में है उसकी व्यक्ति ज्ञान दर्शन के अलावा होती ही नहीं। कोई ज्ञान दर्शन ही उसका परिणमन है सचमुच में। आत्मा परिणमता है, गुरुदेव ने भी एक बार बोला और आता भी है कि सचमुच में तो ज्ञान को ही चेतना बोली जाती है, अनंत गुण में से ज्ञान को ही चेतना बोली जाती है, क्योंकि ज्ञान के अलावा कोई गुण के पास जानना स्वभाव ही नहीं है। श्रद्धा को पता नहीं है कि मैं श्रद्धा हूँ, चारित्र को पता नहीं मैं चारित्र हूँ, सुख को पता नहीं मैं सुख हूँ, वो सब को बताने वाला तो ज्ञान है। तो ज्ञान चेतना में ही आत्मा प्रतिष्ठित है, उपयोग में उपयोगवान है, उपयोग की सत्ता उपयोगवान को छोड़ती नहीं है। ऐसा उपयोगवान को विश्वास आना, उपयोगवान का ऐसी श्रद्धा करना, उपयोगवान की प्रतीति करना, उसको बोला जाता है दृष्टि। और उसी के साथ में जब वहां उपयोगवान पर दृष्टि पड़ती है कि मेरे उपयोग में उपयोगी है, मेरे उपयोग में क्रोधादि नहीं है, तो उसका पहले में पहले उपयोग तो उपयोगवान से कभी छूटता नहीं। और दृष्टि को विषय मिल जाता है ज्ञान के पास से कि ये ज्ञान उपयोगवान को ही प्रदर्शित कर रहा है, तो मेरा स्वभाव भी उस पर ही जाने का है, तो दृष्टि वहां उपयोगवान पर चोटती है। तब दृष्टि पूर्वक ज्ञान की प्रगटता होती है और वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोला जाता है। तब स्वप्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक निश्चय से प्रकट होता है, उसको बोला जाता है कि ये ज्ञायक भाव अस्थि रूप है और उसमें प्रमत अप्रमत की नास्ती है। ऐसा सम्यक एकांत स्वरूप ज्ञायक भाव की दृष्टि करने से प्रमत अप्रमत मेरे में नहीं है, उसकी नास्ती हो गई। और ऐसा सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत प्रकट हो गया, उसको बोला जाता है अनेकांत का तीसरा प्रकार। पहला प्रकार स्वचतुष्टय में पर चतुष्टय की नास्ती, दूसरा प्रकार ज्ञायक भाव में अप्रमत प्रमत की नास्ती। और ऐसा अप्रमत प्रमत ज्ञायक भाव में नहीं है, ऐसा विश्वास जब आ जाता है तो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है, उसको निर्विकल्प ज्ञान में निर्विकल्प प्रमाण बोला जाता है, दृष्टि को निर्विकल्प दृष्टि बोली जाती है। ये अनेकांत को सम्यक एकांत से समझने का फल है, वो फल को बोला जाता है कि सम्यक अनेकांत। वो सम्यक अनेकांत ज्ञान में प्रकट होता है, वो अपने द्रव्य को द्रव्य रूप और अपने पर्याय को पर्याय में जैसा जैसा भाव आनंद आदि चल रहा है उसको उसी समय निर्विकल्प ज्ञान के समय अनुभव के समय वो ज्ञान उसको जान लेता है, उसको बोला जाता है कि श्रद्धा का निर्विकल्प स्वभाव है और ज्ञान का स्वविकल्प स्वभाव है और अनेकांतिक स्वभाव है। अनेकांतिक स्वभाव ज्ञान का तो प्रथम से है, मगर वो स्वभाव की प्रगटता अनुभव के काल में होती है। उसकी निर्विकलता, ज्ञान की भी निर्विकलता, ज्ञान का भी सम्यक प्रकार से जानना, ज्ञान का भी निर्विकल्प प्रमाण, वो दृष्टि पूर्वक अनुभव के काल में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तब वो ज्ञान सम्यक प्रकार से अपनी द्रव्य और अपने पर्याय को जानने में समर्थ हो जाता है। तब तक जानना बंद नहीं होता है, वो जानता तो है, मगर जानने जानने में फर्क है। अनुभव के साथ में जानना और अनुभव के पहले जानना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अनुभव के पहले वो ज्ञान के साथ में मिथ्या तो चलता रहता है और अनुभव के समय में सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है, तो उसको बोला जाता है तीसरे नंबर का अनेकांत। ऐसे तीन प्रकार अनेकांत के होते हैं, स्वचतुष्टय में पर चतुष्टय की नास्ती, आत्मा में ज्ञायक भाव में प्रमत अप्रमत की नास्ती और ज्ञायक की अस्थि, और वो ज्ञायक की अस्थि ऊपर दृष्टि पड़ के जो सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है, वो सम्यक ज्ञान को तीसरे नंबर का अनेकांत बोला जाता है। ऐसी अनेकांत की व्यवस्था अपने स्वभाव का स्मरण करके, अपने स्वभाव पर दृष्टि देके, वो मुझे बेंसरी का बोल भी आया था ना कि दृष्टि कहाँ रखना, ज्ञान में सब पता चल गया तो अभी क्या करना। अभी पता चल गया कि लक्षण ऐसा है, लक्ष्य ऐसा है, ज्ञान ऐसा है, ज्ञेय ऐसा है, वो सब पता चल गया, फिर क्या करना? फिर नजर कहां डालना, नजर में क्या लेना? तो नजर के लिए क्या करना, नजर के लिए कोई पर्याय को ऐसे इधर भेज दो और द्रव्य को ऐसे अलग रखो तो द्रव्य की नजर हो जाएगी। अरे भाई ऐसे द्रव्य पर्याय कभी भिन्न होते ही नहीं, ऐसे द्रव्य पर्याय भिन्न होवे ने तो निर्विकल्प अवस्था में सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान वही रहता है, पर्याय वही रहती है, द्रव्य जहां रहता है वही पर्याय रहती है, उससे अलग इस तरीके से नहीं होती है पर्याय। अभी सोना है ना, सोना उसका घाट है, घाट तो उसका घाट बीटी चेन सब होता है ना, तो वो चेन को देखने वाला और सोना को देखने वाला है, उसमें नजर की बात है। अभी घाट को तोड़ दो आप, घाट को तोड़ दो फिर सोना को देखो तो उसमें पुरुषार्थ कौन सा है? आप घाट को तोड़ ही दो फिर आप सोना को देखो तो उसमें क्या पुरुषार्थ है? वो तो सोना ही दिखेगा ना, सोना ही दिखेगा, घाट है ही नहीं तो फिर सोना ही दिखेगा ना। अभी घाट को रखो बराबर, घाट को तोड़ो मत, और घाट वाली बंगड़ी होगी उसको फेंक दो तो सोना भी चला जाएगा। अभी घाट को बंगड़ी में रखो, सोना में रखो घाट को, और उसको सामने रख के नजर करो कि ये सोना है कि घाट है। बस उसमें जब सोना दिखे तो उसको बोला जाता है इसकी पर्याय दृष्टि छूट गई। वो पर्याय को किधर दूर नहीं करना है, पर्याय को कहीं भेज के द्रव्य की दृष्टि नहीं होती है, पर्याय को वहां रख के, क्योंकि पर्याय को दूर कोई कर नहीं सकता है, पर्याय वहां से निकल नहीं सकती है, पर्याय को आप दूर नहीं इस तरीके से कर सकते हो, वहां रखो। वो ग्यारहवीं गाथा में आया ना कि पर्याय को गौण करके, पर्याय को गौण करके, पर्याय को गौण करके अब उतार करके द्रव्य को देखो। तो इसमें घाट पर नजर नहीं जाना, घाट होते हुए भी घाट को नहीं देखना, वो तो नजर की ब्यूटी है। अगर घाट को ही निकाल दो तो उसमें पुरुषार्थ क्या है? वो तो सोना दिखेगा ही सबको, तो ऐसा हो जाएगा कि देखने वाली पर्याय ही नहीं रहेगी तो देखेगा कौन सोना को? ऐसे नहीं होता है द्रव्य दृष्टि। ऐसा हो गया ना कि दृष्टि के विषय की मस्ती में जैसे पर्याय को इस तरीके से अलग नहीं किया जाता। भैया दृष्टि का विषय में पर्याय सर्वथा नहीं है, वो बात 100% सम्यक है, और अनुभव के काल में इस तरीके से दृष्टि है, दृष्टि होती है, वो भी 100% सम्यक है। इस तरीके से देखने से द्रव्य दृष्टि होती है, और पर्याय होनी चाहिए द्रव्य जैसी। लक्ष लक्षण में किस तरीके से आप नजर करोगे, लक्षण की लक्ष जैसा है, और लक्षण है लक्ष का, वो लक्ष लक्षण की चर्चा करो तब दृष्टि कैसे करना, तो कि तब लक्ष पर इस तरीके से जाया जाता है, क्योंकि वो बंगड़ी है ना वो सोना की है, उसमें पीतल नहीं है, उसमें चांदी नहीं है, सोना की बंगड़ी लेके द्रव्य दृष्टि का विचार करना, नजर जाएगी उधर द्रव्य पर तुरंत, ये तो सोना ही है, मैं तो त्रिकाल द्रव्य ही हूं, लक्षण तो उत्पाद भी वाला है, मैं तो ध्रुव हूं। तो ध्रुव की दृष्टि होने से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत हो जाती है। ऐसा इसमें उपयोग में उपयोग है, इस तरीके से बताना चाहते हैं। उपयोग में उपयोग ऐसा पता चल जाए तो उसको शुद्ध उपयोग होता है, बाद में शुद्ध परिणति चलती रहती है। उपयोग कैसा कितना भी बार चला जाए परिणति छूटती नहीं है, ऐसी परिणति निरंतर चालू रखने के लिए उपयोग में उपयोग है ऐसा अभ्यास करके, मैं उपयोगवान हूँ उसके ऊपर दृष्टि जाएगी तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। इस तरीके से सब मोक्षार्थी जीव अपनी निज निधि को पहचान कर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना।